चैप्टर 27। अब आगे। रुद्र का विला। रुद्र का रूम। रूही की बात सुनकर कि उसे यहाँ नहीं रहना बल्कि सिंघानिया हिला जाना है, इस बात को सुनकर रुद्र रूही के कान के पास जा उसके कानों को अपने होठों से छूते हुए बोला, रूह, यहाँ तुम चलने की हालत में भी नहीं हो और तुम इस हालत में सिंघानिया विला जाना चाहती हो। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि तुम चल क्यों नहीं पा रही हो तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? रुद्र का इतना कहना ही था कि रूही के गाल शर्म से लाल होने लगते हैं। वहीं रुद्र रूही के गाल पर वापस से किस करते हुए बोला, रूह, अब तुम आराम से सो जाओ क्योंकि तुम्हें आराम और नींद की बहुत ज़रूरत है। तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। इतना बोल वे रूही को लेटा उसे कंबल से कवर कर कमरे के बाहर निकल जाता है। वहीं रूही भी अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे अब भी थकान महसूस हो रही थी। वहीं कमरे के बाहर आते ही रुद्र की आंखें कठोर हो जाती है और वे कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी सर्दावास में बोला, रूह, अब तुम्हें इसी विला में हमेशा मेरे पास मेरे करीब रहना होगा क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम दोबारा किसी के करीब जाओ। इतना बोल वे अपनी गहरी नज़रों से गेट की तरफ देख वहां से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एशिया में एक बहुत बड़े आलीशान और लग्जीरियस विला के बड़े के हॉल में एक किंग साइड सोफे पर दो खतरनाक इंसान बैठे हुए थे जिनका इस पूरे एशिया पर पूरा कंट्रोल था। तभी उनमें से एक इंसान जिसका नाम अविनाश खुराना था, वे अपने सामने खड़े अपने खास आदमी नीरज को देखते हुए गुस्से में बोला, अपना मुंह खोलने के पहले ये सोच लेना कि अगर तुम इस बार भी बिना कुछ पता किए खाली हाथ आए हो तो मैं तुम्हें इस बार जान से मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो इतने सालों बाद भी एक लड़की का पता तक न लगा पाए। अपने बॉस की बात सुनकर नीरज के चेहरे पर डर की लकीरें आ जाती है, जिसे छुपा वे अविनाश को देखते हुए बोला, नहीं बॉस, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं दोनों मैडम के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। मुझे पता चल गया है कि दोनों मैडम इस समय कहाँ और किस जगह पर हैं। नीरज की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ जाती है, जिसके अविनाश का भाई माहिर एक्साइटेड होते हुए बोला, अगर तुम्हें पता चल गया है कि मेरी दिव्या और मेरी भाभी रूहानी का कहाँ पर है तो बताते क्यों नहीं हो? अब क्या मैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए भी अलग से मुहूर्त निकाल कर दूं? माहिर की बात सुनकर नीरज हड़बड़ा जाता है। वहीं अविनाश माहिर को शांत कराते हुए नीरज को देख उसे बोलने का इशारा करता है। वहीं नीरज अविनाश के इशारे को समझते हुए बोला, बॉस, अभी मैं ज्यादा कुछ तो पता नहीं लगा पाया, पर मुझे ये पता चल गया है कि दोनों मैडम इस समय मुंबई में एक अनाथ आश्रम में हैं। बाकी की जानकारी मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ।
नीरज की बात जैसे ही अविनाश और माहिर के कानों में पड़ती है, वैसे ही दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है।